अपनी सीट पर आ जाए भृकुटी के बीच। खुद को चेक करें, आज मेरे मन की स्थिति, मेरे संकल्पों की गति, स्पीड ऑफ माय थॉट्स, मेरे संकल्पों की क्वालिटी, चेक करें। मेरे शब्द, मेरे कर्म, जैसे हम अपने काम कारोबार में चेक करते हैं, कहां कहां फायदा, कहां कहां नुकसान, कहां घाटा, चेक करते हैं, चेंज करते हैं अपनी चेकिंग। कौन से संकल्पों से घाटा, बिंदी लगाए, जीवन में बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन कई बार अचानक ऐसी सीन आती है कि मन यही कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रश्न लग जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कई बार जो सोचा नहीं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हो जाता है, और कई बार जो सोचा नहीं वो ऐसा हो जाता है जो मन कहता है, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और माइंड हमसे बार बार आंसर मांगता है, किसी के लिए हमने कुछ नहीं किया होता लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, किसी के लिए हमने बहुत कुछ किया होता है लेकिन रिटर्न में कुछ और ही आ जाता है। माइंड को आंसर्स मांगता है, अपने जीवन में चेक करें, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसी बात जिसके लिए मन अभी भी आंसर मांगता है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सब किसने किया और मेरे साथ क्यों किया। ओम शांति। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है। एक क्लिक ऑफ द बटन पर हम पूरी दुनिया में क्या, क्यों, कैसा, हमें आंसर मिल जाता है। कहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबके आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी अपने जीवन की बात का आंसर नहीं मिलता कि क्यों हो रहा है, और तब हम ढूंढते हैं कि हम इस चीज का ब्लेम किस पर डालें, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो हम ब्लेम डालते हैं, छोटी छोटी चीजें हम कहते हैं इसकी वजह से हो गया, इनकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। लेकिन जब कोई बड़ी बात होती है जिसके लिए ब्लेम यहां नहीं डाला जाता, तो फिर हम ब्लेम किस पे डालते हैं, किस पे डालते हैं, उंगली कहां रखते हैं, किस पे डालते हैं, उस पे डाल देते हैं जो अपना जवाब नहीं दे सकता हमें, तो हम उस पे डाल देते हैं। और उस पर ब्लेम डालने से होता क्या है, हम उससे नाराज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बचपन से हमने सुना था, बहुत इंग्रेन्ड है हमारे सिस्टम के अंदर ये बात कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, ये डीप इंग्रेन्ड है हमारी सबकॉन्शियस में। और इसीलिए जब भी कुछ ऐसा होता है तो आसपास के लोग भी कहते हैं गॉड्स विल, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की भावी। तो ऐसे समय पर वो भगवान कैसा लगेगा, जब कुछ अच्छा होता है और लोग कहे ईश्वर की मर्जी तो ईश्वर अच्छा लगेगा, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है और फिर लोग कहे ये ईश्वर की मर्जी, तो ऐसा ईश्वर कैसा लगेगा, फिर अच्छा लगेगा। हमने यहां तक भी देखा है कि लोग अपने घर में जो भी उनके पास देवी देवताओं की मूर्ति है, चित्र है, उसको निकालते हैं, फेंकते हैं, तोड़ते हैं। एक भाई तो उसके ऊपर तोड़कर उसके ऊपर पैर मारा, कहता क्या, कौन है ये कौन है, इसकी वजह से ऐसा हुआ मेरे जीवन में। तो जिस समय मैं आत्मा दर्द में हूं, मतलब बच्चा दर्द में है और उसको अपने मम्मी पापा की सपोर्ट की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, वो अपनी प्रॉब्लम का कारण ही मम्मी पापा को ठहरा देता है। और क्योंकि उनको ठहरा देता है तो उनकी सपोर्ट लेने की बजाय उनसे ही नाराज हो जाता है, और उनसे नाराज होकर उनसे ही अपने आप को क्या कर लेता है, दूर कर लेता है। कैसे भगवान का क्या, कितना बोला था उसको, कितना बोला था उसको, कितना बोला था, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तो क्यों ऐसा होता है कि भगवान कभी कभी हमारी बात मानता है, कभी कभी नहीं मानता है? पेरेंट है, सर्वशक्तिवान है, वो तो हर बात मान सकता है ना, उसने चूज थोड़ी करना है कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी है। फिर ऐसा कैसे होता है कोई कोई हमारी बातें फटाफट मानी जाती हैं और कोई कोई हमारी बातें बिल्कुल नहीं होती वैसी जो हम चाहते हैं, और उस समय हम उस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे भी नाराज हो जाते हैं। तो एक सेकेंड के लिए सब कुछ जो हमने सुना है उसको 5 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, वापस ले आएंगे उसको, लेकिन सिर्फ अपने आप से बहुत साक्षी होकर ये पूछते हैं कि अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य कैसा होता, एक वर्ड में, सिर्फ साक्षी होकर। अभी अपनी लाइफ को साइड पे रखो, सिर्फ साक्षी डिटैच्ड होकर सोचो, अगर परमात्मा सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य कैसा होता, परफेक्ट। अगर आप सबका भाग्य लिख रहे होते तो आप कैसा लिखते हैं? सपोज यू गेट द पावर फॉर वन डे राइट एवरीवन्स डेस्टिनी, कैसा लिखेंगे? ये सब कुछ जो सारा दिन होता हुआ दिख रहा है ऐसा आप लिखेंगे किसी के लिए? नहीं ना। सपोज किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया हो, कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसने आपको धोखा दिया हो, बहुत बहुत गलत किया आपके साथ, और आपको पावर मिल जाए उसके परिवार का भाग्य लिखने की जिसने आपके साथ गलत किया है। विजुअलाइज दिस, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया और आपको पावर मिल जाए उसके परिवार का भाग्य लिखने की, आप उसके परिवार के भाग्य में कितना गलत लिखने की क्षमता रखते हैं, कितना लिख सकेंगे बताइए? जो कुछ होता हुआ दिख रहा है वो लिख सकेंगे आप उसके परिवार के भाग्य में? क्यों, इतना गलत किया उसने आपके साथ तो आप नहीं लिख सकते उसके भाग्य में ऐसा? क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं लिख सकते? उसने आपके साथ गलत किया और हमें पावर मिली है उसकी डेस्टिनी लिखने की, तो हम उसके साथ गलत लिखें या नहीं लिखें? हां जी, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? रीजन इज कि हम क्यों नहीं लिखेंगे? हां जी, अच्छा उसमें और हम में क्या फर्क है? आत्मा का स्वरूप ब्यूटीफुल है। तो कभी हमने ये सोचा कि मैं मनुष्य आत्मा अपनी कमजोरियों के साथ भी और जिसके साथ इतना गलत हुआ है तो भी मैं गलत नहीं लिख सकता, वो जिसके लिए मैंने कह दिया उसने लिखा तो हम तो उससे थोड़े बेटर हो गए फिर? तो नहीं लगता हम बेटर नहीं हो गए कि हम कहेंगे हम तो इतना गलत किसी के लिए लिख नहीं सकते, लेकिन वो तो आराम से बैठ के सारा दिन लिख रहा है सबके लिए, फिर हम उसकी क्यों महिमा कर रहे थे? हम उसको क्यों याद करते हैं? वो इतना गलत गलत लिखता है। सो इट नीड टू पॉज कि हम जो सुन रहे हैं उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है, नजरिया क्या है, बात क्या थी, कैसी कही गई थी और हमने कैसी समझी, और फिर जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन होते 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 वो बातों का भाव कभी कभी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर परमात्मा भाग्य लिखते हर आत्मा का तो दुनिया कैसी होती, हर एक का मन कैसा होता, ऑलवेज हैप्पी, हर एक की बॉडी कैसी होती, ऑलवेज हेल्दी, हर एक के रिश्ते कैसे होते, ऑलवेज परफेक्ट, इसमें तो डिस्कस करने का क्या है? और आज के समय में शायद ही कोई घर मिलता है जिसमें हर चीज परफेक्ट हमेशा चल रही है। यहां तक पहुंचे हैं कि घर में कोई बहुत खुश होता है किसी दिन सारे लोग, तो कोई धीरे से आके बोलते बस बस ज्यादा खुश नहीं होना, खुश होने से भी डरते रहते हैं कि ज्यादा खुश नहीं होना कुछ बात आ जाएगी, ऐसे समय पर हम कहते हैं। तो एक, अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखते तो सबका भाग्य परफेक्ट होता, और अगर परमात्मा हम सबका भाग्य लिखते तो सबका भाग्य इक्वल होता। आप अपने दो बच्चों का इक्वल लिखेंगे या कम ज्यादा लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे, कम ज्यादा लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे। तो जो काम हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता, वो तो हमसे बहुत बेटर करेगा, वो ना इस समय इक्वल लिख रहा है, वो ना इस समय परफेक्ट लिख रहा है, और हम उसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो वी हैव टू पॉज एंड चेक कि हम कैसे ब्लेम लगाते हैं। एक और बिलीफ सिस्टम बचपन से सुना था कि जैसा कर्म हम करते हैं उसका परिणाम आता है, लॉ ऑफ एनर्जी है, और इसको भी ठीक तरह से समझना क्योंकि इसको भी ठीक तरह से नहीं पकड़ते हैं कि एनर्जी है, मैंने क्रिएट की, वो एनर्जी बाहर जाएगी वापस आएगी। तो दो अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है कि एक है सब कुछ जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो उसने लिखा है, और एक है सब कुछ जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो, दोनों में कितना डिफरेंस है? और हम बचपन से दोनों सुनते आए और दोनों के लिए हमने कहा किया कि नहीं किया, सब कुछ भगवान ने लिखा हमने कहा हां जी, पर किसी ने कहा सब कुछ हमारे कर्मों से होता हमने कहा हां जी, दोनों कैसे हो सकते हैं? दोनों में से तो एक ही हो सकता है ना, Either he is writing everything or I am writing everything. दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? तो अगर हम इस बात को माने कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमसे गलतियां होती हैं, और इसीलिए भाग्य हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें आती हैं। दूसरा, हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं, तो जब कर्म अलग अलग होंगे तो फिर भाग्य भी अलग अलग होगा। वो अगर लिखता तो सबका एक जैसा लिखता, लेकिन हम जब लिख रहे हैं तो हम अपने कर्मों अनुसार लिख रहे हैं, तो हमारा भाग्य परफेक्ट भी नहीं है और हमारा भाग्य इक्वल भी नहीं है। और अगर वो लिखता तो परफेक्ट भी होता और इक्वल भी होता, तो कौन सा वाला राइट लगता है? कौन सा वाला राइट लगता है? किसने लिखा हमारा भाग्य? मेरा भाग्य किसने लिखा? रखो उंगली उस पर, मेरा भाग्य किसने लिखा? पावर। अब मेरा भाग्य चेंज करना है तो किसने करना है? वो भी पावर। ब्लेम किया तो पावर गई, और ब्लेम किया तो उससे ही दूर हो गए, और उससे जो शक्ति मिल सकती है अपनी लाइफ में आई हुई बात को क्रॉस करने के लिए, उससे अपनी लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मुझे चाहिए नहीं उसकी शक्ति, क्योंकि उसने मुझे दर्द दिया है। अपनी इस भ्रांति की वजह से उसकी शक्ति अपने पास आने से ब्लॉक कर देते हैं। जैसे किसी को ब्लॉक करते हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे, ब्लॉक, हम भगवान को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हम उससे इतना गुस्सा हो जाते हैं। और आसपास के लोग भी आके कहते हैं भगवान ने किया, भगवान ने किया, भगवान ने, वो भी नहीं सोचते बोलने के टाइम के क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, भगवान ने किया, भगवान ने किया। तो what we do is we block that power in our life। तो आज से फिर हम देखेंगे ये कैसे होता है, लेकिन important है यहां clarity कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, एवरेज हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ बहुत बुरा भी हो रहा है, वो सब कुछ मैंने अपने कर्मों से लिखा है, लेकिन उसको समझना राइट तरीके से है। अग्रीड है या कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो बोलो, तो फिर आगे बढ़े, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम को यहां से चेंज करके जाना है। क्योंकि नहीं करते राइट तो ना अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना अपने कर्मों पर अटेंशन रखते हैं, और ना अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की पावर पकड़ते हैं, तो फिर वी लिव लाइक अ विक्टिम इन लाइफ। और ये वाला बिलीफ सिस्टम एक बिलीफ नहीं लेकिन हमारा ट्रुथ बन जाए तो जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाता है। तो आज से सिंपल बात, जब भी मन कहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उंगली कहां रखनी? उंगली कहां रखनी है? अपने पास। फिर उसको आगे देखना है कि उसको पावर में कैसे कन्वर्ट करना है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उंगली मेरे पास। अब लॉ ऑफ कर्म मतलब क्या? मीन्स व्हाट? मतलब एनर्जी आई क्रिएट, इट रेडिएट्स, हिट्स दैट वॉल, कम्स बैक, रिबाउंड आएगा ही, आएगा ही। लेकिन कर्म अर्थात क्या? कर्म अर्थात सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देता है, कर्म अर्थात मेरे इंटेंशंस, कर्म अर्थात मेरे संकल्प, मेरी सोच, कर्म अर्थात मेरे बोल, एंड कर्म अर्थात मेरा व्यवहार। बिकॉज कर्म अर्थात एनर्जी, एनर्जी जो मैंने क्रिएट की है। तो इंटेंशन एक एनर्जी है, थॉट्स एक एनर्जी है, फिर वर्ड्स और बिहेवियर है। इनफैक्ट हमारी थॉट्स वर्ड्स और बिहेवियर से कई ज्यादा होती है, ज्यादा होती है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को सिर्फ अपने वर्ड्स और बिहेवियर के लेवल पर चेक करते हैं। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला, मैंने किसी को कोई दुख नहीं दिया, मैंने यहां कितना कुछ क्रिएट किया है, वो भी एनर्जी है जो मैंने क्रिएट की है। सो कर्म इज थॉट्स वर्ड्स बिहेवियर, संकल्प बोल व्यवहार, एनर्जी क्रिएट की। अब एनर्जी क्रिएट की बाहर भेज दी, चाहे वो एनर्जी मैंने अपने शरीर के लिए, कल से इसलिए हम ये कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अपना संकल्प करेक्ट करना, क्योंकि भाग्य संकल्प से बन रहा है, भाग्य परिस्थिति से नहीं बन रहा है। परिस्थिति तो पुराने किए हुए संकल्पों का रिजल्ट है। तो कुछ भी बात आ जाए, कुछ भी, सबसे पहले यहां ठीक कर लेना, क्योंकि इमिजिएटली एक नया कर्म क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही मैंने एक थॉट वर्ड बिहेवियर क्रिएट किया, मैंने एक एनर्जी क्रिएट करके बाहर डाल दी। तो इसको हम एक बॉल की तरह देखेंगे कि हमने क्रिएट किया, बाहर डाल दी। हाथ पकड़े ऐसा, होल्ड योर बॉल एंड दिस हैज टू बी फिटेड इन आर हेयर फॉर एवर। अब ये बॉल पकड़ें और सामने वाली दीवार पर ध्यान से फेंकना, जैसा फेंकना चाहते हैं वैसा फेंकना, लेकिन याद रखना वैसे ही वापस आएगा। तो फेंकते समय ध्यान रखना कौन सी स्पीड पे आपको बॉल वापस चाहिए, कौन से एंगल पे आपको बॉल वापस चाहिए, किस तरह से आपको बॉल वापस चाहिए, वापस कैसे आती है वो सोचते हुए अब फेंको। ऐसे नहीं उठा के ऐसे फेंक दिया फिर बाद में बोलते ऐसे क्यों आई, ऐसे क्यों आई ये बॉल। अब सोचो और अपना कर्म करो, फेंको बॉल, फेंक दिया। अब ऐसे हम सारा दिन में कितने फेंकते होंगे, एवरी थॉट इज गोइंग आउट लाइक दिस, एवरी थॉट इज गोइंग आउट लाइक दिस, एनर्जी दैट आई एम क्रिएटिंग, वेयर ऑल इट्स गोइंग आउट, इट्स गोइंग ऑन माई बॉडी, इट्स गोइंग टू पीपल, इट्स गोइंग टू माई वर्क, इट्स गोइंग टू माई एनवायरमेंट। अब ये बॉल सामने वाली वॉल पे हिट करती है और वापिस आती है, कोई बॉल इमिजिएटली उसी सेकेंड वापिस आती है, मतलब मैंने अभी अभी कुछ किया और अभी अभी मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है, या तो मुझे अभी बुरा लग रहा है या मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सडनली मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई है या फास्ट थी वो ठीक हो गई है, अभी अभी रिजल्ट मिलेगा, अभी अभी कर्म किया अभी अभी रिजल्ट, विच मीन्स बॉल फेंकी बॉल वापस आई है। एक होता है मैंने बॉल फेंकी थोड़े टाइम बाद वापस आई है, और एक होता है मैंने बॉल फेंकी और बहुत ज्यादा टाइम बाद वापस आई है, लेकिन वापस जरूर आती है, ये सर्टेन है कि वापस जरूर आती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा टाइम बाद आती है ना, तो मुझे पता नहीं होता, मुझे नहीं याद रहता कि ये मैंने फेंका था तो वापस आ रहा है, सो मेरा माइंड इमिजिएटली कहता है ये ऐसे क्यों हो रहा है। सी व्हेन आर वी क्वेश्चनिंग लाइफ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, सो वी आर क्वेश्चनिंग व्हाट इज हैपनिंग टू मी, मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस एनर्जी की तरफ जो मेरे पास आ रही है। तो आज से हमारा वो क्वेश्चन फिनिश होता है, कल हमने देखा था प्रश्न चित्त बंद करना है, बिंदी लगानी है। तो जैसे ही माइंड कहे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहना है, क्या कहना है माइंड को, मुझे याद नहीं लेकिन कभी ना कभी मैंने ये बॉल तो फेंकी थी, फेंके बिना बॉल आ नहीं सकती, लॉ ऑफ एनर्जी है, फेंके बिना बॉल आ नहीं सकती, लॉ ऑफ कर्म है। तो भले मुझे याद नहीं मैंने कब फेंका, भले मेरा मन कहे मैं इतना गलत बॉल फेंक ही नहीं सकता, लेट्स कीप दैट फॉर अ लिटिल लेटर, अभी मुझे सिर्फ फर्स्ट आंसर अपने माइंड को देना है, और फर्स्ट आंसर देकर क्वेश्चंस को स्टॉप करके फुल स्टॉप हमेशा लगाना है। क्यों फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि जैसे ही ये बॉल आ रही है और मैंने कहा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उतनी देर में मैंने तीन बॉल और फेंक दी, और वो तीन बॉल की एनर्जी अच्छी नहीं थी फिर से। सो इसीलिए कल क्या हमने देखा, जैसे ही कोई सिचुएशन आए सबसे पहले क्या लाइन दे दो, इसमें भी कल्याण है, मतलब मैंने इमीडिएट जो बॉल फेंकी वो एनर्जी उसकी कैसी थी, अच्छी वाली थी, कल्याण वाली एनर्जी थी। फिर भी माइंड कहे क्यों ऐसा हुआ, तो माइंड को कहना किया होगा मैंने कुछ पहला, बिना मेरे किए तो कुछ आ नहीं सकता मेरे पास, तो ये मेरे ही कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हो गया सेकेंड फुल स्टॉप, क्लियर। तो एवरी टाइम माई माइंड सेज वाई, आई से आई एम रिस्पॉन्सिबल, बट वाई, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल। बॉल ऐसे आ नहीं सकता जब तक ऐसे भेजा नहीं, मन कहेगा लेकिन मैंने नहीं भेजा, तो मन को कहना तुम्हें याद थोड़ी है सारे कितने कितने भेजे हैं तुमने, याद नहीं है ना तुम्हारे को, काउंसिल योर सेल्फ, अपने आप से बात कीजिए। ज्ञान मतलब समझ, समझ आ गया तो इसको समझदार बनाइए, इसको समझदार बनाइए, ये बेसमझ बन जाता है जब बोलता है मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा, वेस्ट थॉट्स। तो ज्ञान मतलब समझ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, तो इसको समझदार बनाना है, कहते मैंने किया था। अब सारा दिन क्या याद रखना है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कर्म है, और जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या है, वो डेस्टिनी है, एनर्जी कर्म, एनर्जी दिस वे डेस्टिनी, और जो इस डायरेक्शन में आ रहा है वो कभी ना कभी इस डायरेक्शन में गया था। इसको यहां फिट कर लें, दिस बिकम्स लाइक द जीपीएस ऑफ लाइफ, ये जीवन में आपको हमेशा राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, हमेशा
आपसे गलती हो नहीं सकती इसके बाद, और गलती हो गई तो पता होगा गलती की है, अब इसका भी परिणाम आएगा। ये जीपीएस की तरह आपको राइट 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 ऐसे लेके जाएगा। उसको एक कंपस की तरह पकड़ना है अपनी लाइफ में, लॉ ऑफ कर्म। बचपन से सुना है, कुछ नया नहीं है, लेकिन सारा दिन में उसको पकड़ के नहीं चलते हैं, पकड़ के नहीं चलते, अपने ही कंपस को साइड पे रख देते हैं। अब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी तरह से पता है कि हमने कभी गलत किया ही नहीं है उनके साथ। गलत किया क्या? मैंने कभी गलत सोचा ही नहीं है। सोचना क्या? मैंने तो दुआओं के अलावा उनको कुछ दिया नहीं है कभी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर हमारा फर्स्ट लेसन, कर्म करने वाली शक्ति कौन? किसने कर्म किया? कर्म किसने किया? कर्म किसने किया? किसने किया कर्म? किसने किया? सपना बहन, बॉडी नहीं करती ना कर्म, बॉडी कर्म कौन करता है? निलेश भाई, कर्म कौन करता है? ठीक है, अब आज मैं इस ड्रेस में हूं, आप उस ड्रेस में हैं, आपने और मैंने मिलकर कोई कर्म किया, और कर्म वो करते करते मैंने आपके साथ कुछ बहुत गलत कर दिया, एंड बहुत मतलब बहुत वाला ही किया कुछ, पर उसके बाद माय लाइफ इज ब्यूटीफुल। सब लोग बोलते हैं इतना गलत किया फिर भी जीवन बड़ी अच्छी चल रही है इनकी। आजकल हमें ये बड़े क्वेश्चन मार्क आते हैं सबकी लाइफ देखकर कि ये इतना गलत कर रहे हैं, इनके साथ अच्छा हो रहा है, ये इतने अच्छे हैं, इनके साथ गलत हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं क्योंकि हम लाइफ को कितना देखते हैं? इस ड्रेस के अंदर। इट इज द जर्नी ऑफ द सोल, नॉट द जर्नी ऑफ द बॉडी। जर्नी ऑफ द सोल। आज मैं इस ड्रेस में हूं, ये बहन इस ड्रेस में है, आज मैं इनके साथ कुछ गलत करती हूं, ये अपने कमरे में जाती है, मैं अपने कमरे में जाती हूं, कल ये एक अलग ड्रेस में आती है, मैं एक अलग ड्रेस में आती हूं, तो वो जो हमने पिछली बार कुछ गड़बड़ की थी, आर्ग्यूमेंट हुई थी, उस एनर्जी का इफेक्ट कल आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, मैंने इनसे कुछ बोरो किया, मैंने कहा मुझे ना शॉप से कुछ लेना है, आप मुझे 5000 रुपीस दे दो, इन्होंने प्यार से दे दिए, तो मुझे वापस देना चाहिए ना, बोरो किया था ना, बोरो किया था, गिफ्ट नहीं लिया था, बोरो किया था। पर नेक्स्ट डे मेरी भी ड्रेस चेंज हो गई, उनकी भी ड्रेस चेंज हो गई, अब मुझे वापस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं बोलूंगी छोड़ो ना, ड्रेस बदल गई, अब क्या चेंज वापस करना, कल की कल बात खत्म, खत्म खत्म होनी चाहिए। अब अगर मैंने वापस नहीं किया, मैं कहा छोड़ दो ना, क्या करना है? इसलिए जीवन में ध्यान रखना, कोई कर्म पेंडिंग नहीं रखना कभी, कुछ भी ऐसे वैसे काम कारोबार बहुत ध्यान से। बिजनेस में एथिक्स वर्ड कोई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एथिक्स के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहिए। और एथिक्स भी सिर्फ ऑर्डिनरी नॉर्मल एथिक्स नहीं, जो आज की दुनिया बोलेगी ये तो नॉर्मल है, नहीं, हाईएस्ट एथिक्स, इतने हाईएस्ट एथिक्स के लोग आपको देखें और बोले भैया बिजनेस ऐसे नहीं चलता, बोलो कोई बात नहीं, कर्म ऐसे चलते हैं, और जिसके कर्म ठीक है उसका बिजनेस ठीक रहेगा। हाईएस्ट एथिक्स, नॉट नॉर्मल एथिक्स। नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज हुई है इस टाइम। हाईएस्ट, हाईएस्ट, अपनी कॉन्शियंस को और ऊपर उठाओ, हाईएस्ट एथिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से दूसरे का अच्छा ही हो, कुछ ऐसा ना हो जो मेरे से कभी किसी के लिए कुछ ऑपोजिट हो जाए। तो मैंने इनसे 5000 बोरो किए, मैंने सोचा छोड़ दो, भूल गई, मांगा नहीं उसने, क्या करना है वापस करके, तो ये ड्रेस चेंज हो गई तो वो भूल गई। लेकिन 10-20-50 साल बीते, मैंने ये वाली ड्रेस चेंज कर ली, राइट? मैं आत्मा शरीर छोड़ा, दूसरी ड्रेस ली, हो सकता है उस आत्मा ने भी शरीर छोड़ा, ड्रेस ले ली, कहीं ना कहीं फिर से हम एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट पेंडिंग रह गया है। कौन से रूप में आएंगे हमें नहीं पता, ना मैं उनको रिकग्नाइज करूंगी ना वो मुझे रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि हम तो जो दिखता है उसको रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन कार्मिक अकाउंट पेंडिंग है। आई हैव नॉट रिटर्न्ड 5000 रुपीस। ऐसे सामने से कोई बात आएगी जो मुझे उसी टाइम जेब से 5,000 रुपए निकाल कर इनको देने पड़ेंगे। होती है ना कई बार बातें, कहती सुबह सुबह नुकसान हो गया, पता नहीं क्या, सुबह सुबह खाली सड़क पर निकले थे, कोई नहीं था, सामने टक्कर हो गई गाड़ी की गाड़ी से, सामने वाला उठा चिल्लाए बोला 5,000 दो अभी। हम कहते भाई चलो जल्दी दो, हम चुपचाप निकाल के दे देते हैं उसको। फिर हम रास्ते में सोचते हैं क्या, क्यों ऐसे हुआ, मैं इतने बजे क्यों निकला, मैं इसी रोड से क्यों गया, मैं उधर से जाता तो आज नहीं होता। जाना ही था, आपका कर्म आपको वही रोड पे उतने ही बजे उसी आत्मा के सामने लेकर ही जाता है, क्योंकि देना ही है, क्वेश्चन मार्क करे फुल स्टॉप। मेरा ही कर्म था, मुझे वापस देना था। ऑपोजिट भी हो सकता है, कोई आकर सडनली आपको गिफ्ट देकर चला जाता है, तब हम नहीं बोलते, बट वो भी कर्म का ही रिटर्न होता है। कोई नेगेटिव चीजें नहीं है कर्म, 99.9% तो सब अच्छी चीजें चल रही है, बीच बीच में कुछ ऐसी थोड़ी वाली आती है। यहां इतने अच्छे से बैठे हैं, बिना अच्छे कर्म के तो नहीं बैठे होंगे, निश्चिंत होकर 3 दिन बैठ रहे हैं, बिना अच्छे कर्मों के तो नहीं बैठ सकते। इतनी शांति स्थिरता एक्सपीरियंस हुई, सो मच वी हैव इन आवर लाइफ फॉर विच वी आर सो ब्लेस्ड, बट ब्लेस्ड बाय आवर ओन कर्म, ब्लेस्ड बाय आवर ओन कर्म। लेकिन कुछ एक बातें आती हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करके टर्न करना है। तो वो जो सामने वाले आता है, कुछ करता है, कुछ बोलता है, कुछ करता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट 5,000 रुपीज, इट कैन बी मच बिगर देन दैट। ये तो सिर्फ पैसे है, किसी के साथ मैंने कोई रिलेशनशिप में कुछ एनर्जी एक्सचेंज राइट नहीं किया, किसी को मैंने अपने सेल्फिश इंटेंशन के लिए कुछ किया, लेकिन कब किया मुझे याद नहीं है, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद नहीं किया, वो सर्टेन है। लेकिन अब ये याद रखना है, कर्म इस शरीर का नहीं, कर्म इस ड्रेस का नहीं, कर्म क्या मैं आत्मा गारंटी ले सकती हूं कि मैंने अपनी इस जर्नी पे कभी किसी के साथ गलत नहीं किया? ले सकते हैं आप गारंटी? नहीं ले सकते। इसीलिए लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या पता चलता है कि ये और मैं कौन थे और क्या थे? जाना नहीं कराने के लिए, बिल्कुल नहीं जाना कराने के लिए। प्रकृति का नियम है कि हमें पास्ट क्या हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो हमें जानना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि हां कुछ किया था। तो कोई भी रिश्ते जिसमें इस समय कोई आपके साथ सही नहीं कर रहा है, डोंट से ये गलत है, से मैं इनके साथ कभी ना कभी कुछ गलत करके आए हैं। क्योंकि जब तक मैंने ऐसा फेंका नहीं, ऐसा आ नहीं सकता। अगर अच्छी चीजें ऐसे आ नहीं सकती बिना मेरे कर्मों के, तो मुश्किल चीजें भी ऐसे आ नहीं सकती बिना मेरे कर्मों के। लेकिन नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लिव लाइक अ विक्टिम ऑफ द पास्ट कि मैंने किया था, मैंने किया था, वो तो हो चुका, फिनिश्ड। पावर कहां है, पास्ट में या प्रेजेंट में? पावर कहां है, पास्ट में या प्रेजेंट में? तो एक बॉल वहां से आ रही है मेरे पास जो अच्छी एनर्जी नहीं है, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे वो रिलेशनशिप इशू है, चाहे वो प्रोफेशनल इशू है, ये मेरे पास्ट का रिटर्न आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो बॉल आती है, हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक बिहेवियर लाते हैं, मतलब उसी टाइम हम क्या करते हैं, उसी टाइम हम क्या करते हैं, जैसे ही बॉल आती है उसी टाइम हम क्या करते हैं, एक नई बॉल फेंकते हैं। इसलिए कल हमने डिस्कस किया, जैसे ही सिचुएशन आए फर्स्ट लाइन करेक्ट क्रिएट करना, ताकि फर्स्ट लाइन से अगली लाइन क्रिएट होने लगेगी, राइट? तो जैसे ही पास्ट मेरे सामने आता है, मैंने एक प्रेजेंट क्रिएट करना है, और जो मैंने प्रेजेंट क्रिएट करना है उसने मेरा फ्यूचर डिसाइड करना है। तो हर क्षण तीनों काल इकट्ठे काम कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखते हुए कर्म करिए, तीनों कालों को देखते हुए कर्म करिए। ऐसा नहीं अभी तो कर लो बाद की बात, ऐसा काम नहीं करना है। शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, हर कर्म का परिणाम होगा। तो पास्ट सामने से आता है, प्रेजेंट क्रिएट होता है, और फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सब लिखा हुआ है। लेकिन लिखा किसके द्वारा? प्रीडेस्टिन्ड तो है ही, प्रीडेस्टिन्ड मतलब प्रीवियसली रिटन डेस्टिनी, बट प्रीवियसली रिटन बाय हु? रिटन बाय हु? रिटन बाय मी, ये फाइनल करना है, नॉट रिटन बाय हिम, रिटन बाय मी, प्रीवियसली डेस्टिन रिटन बाय मी। तो मैं आत्मा हर क्षण कर्म 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 कर रही हूं, यहां रिकॉर्डिंग होती जा रही है, आत्माओं के साथ मेरे कार्मिक अकाउंट क्रिएट होते जा रहे हैं, और सडनली एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती हूं। दुनिया कहती है खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, विच इज नॉट ट्रू। भरपूर आते हैं और भरपूर जाते हैं। किस चीज से भरे हुए आते हैं? सीढ़ी खाली नहीं जाती। अगर सीडी खाली जाती तो बच्चा पैदा होते ही उसकी जन्म पत्री कैसे बनती है? हैव यू एवर थॉट? बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया है अभी तक, अभी तक तो बच्चे को नाम भी नहीं मिला होता, पहले ही जन्म पत्री भी बन जाती है। ये किस बेसिस पे बनी जन्म पत्री? उसी मिनट उसी हॉस्पिटल में उसी लोकेशन में दो बच्चे पैदा हो सकते हैं और दोनों की डेस्टिनी अलग होगी, प्लैनेट्स वहीं होंगे। उसी मिनट एक ही परिवार में जुड़वा पैदा होंगे, एक ही मिनट का डिफरेंस होगा, ग्रह वो ही होंगे, लेकिन दोनों का पास्ट अलग अलग है और इसीलिए दोनों की जन्म पत्री अलग अलग होगी। तो वो जो जन्म पत्री है वो आपकी 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट है, वो आपके इस जीवन की 1 अप्रैल है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस शीट किसने बनाई, कब बनाई थी? वो 31 मार्च की क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो मुझ आत्मा का इस शरीर का लास्ट क्षण मेरा 31 मार्च है, तब तक कितने भी ट्रांजैक्शंस करिए, लेकिन जिस क्षण मैंने आत्मा ने शरीर छोड़ा वो बैलेंस शीट वहां। इसीलिए कहते हैं ना, लेखा जोखा सारा हिसाब किताब, सारा हिसाब किताब वो हमारी बैलेंस शीट है। वैसे के वैसे ही वो बैलेंस शीट मेरी नए कॉस्ट्यूम के लाइफ की बिगिनिंग बैलेंस शीट बनेगी। इसीलिए जन्म पत्री बिगिनिंग के दिन पे ही मिल रही है। लेकिन हम में से कई क्या करते हैं, उसी बैलेंस शीट को रेफरेंस मटेरियल यूज करके पूरी जीवन जीते रहते हैं। वो ओपनिंग बैलेंस शीट है सिर्फ, इसका मतलब ये थोड़ी है जीवन वैसा ही चलेगा। क्या आपका पूरा साल अगला साल डिपेंड्स ओनली ऑन द ओपनिंग बैलेंस शीट? Does it depend on your opening balance sheet? That is only the beginning. What does it depend on? What does it depend on? It depends on how you are going to do business this year. तो कभी भी past के reference को नहीं पकड़ के रखना है। लेकिन मेरे जन्म पत्री में ऐसा लिखा है, लेकिन मेरे जन्म पत्री लिखा है, वो right है जो लिखा है, वो एक science है। वो science क्या बता रही है कि जो बॉल आप फेंक के आए थे वो ऐसे ऐसे वापस आने वाले हैं, वो उसकी साइंस है। इट इज अ साइंस ऑफ द बॉल्स विच आर गोइंग टू रिटर्न टू अस। तो वो बताएंगे 5 साल में ये बॉल आएगी, 10 साल में ये आएगी, 15 साल में ये आएगी, ये वाली अच्छी बॉल आएगी, ये वाली थोड़ी नॉट अच्छी, सब वो साइंस है। साइंस ऑफ जो बॉल वापस आने वाली है, स्पिरिचुअलिटी है साइंस ऑफ जब वो बॉल आएगी तो अब कौन सी बॉल फेंकनी है। वो जन्म पत्री में नहीं लिखा होगा, वो नहीं कोई आपके लिए प्रिडिक्ट कर सकता, वो सिर्फ कौन डिसाइड करने वाला है। इसीलिए हम सबका अनुभव होगा कि जन्म पत्री की कुछ कुछ बातें राइट निकलती हैं और कुछ कुछ बातें राइट नहीं निकलती। डिपेंड्स ऑन कि जब वो बात आई मैंने इधर से क्या भेजा। कोई आपको ये बता सकता है कि आपका अगला साल बहुत भारी है, वो राइट बोल रहे हैं, वो बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, इसका मतलब वहां से कोई डिफिकल्ट बॉल आने वाली है। लेकिन डिफिकल्ट सिर्फ सिचुएशन है, भारी और हल्का सिचुएशन नहीं डिसाइड करते। जीवन भारी और हल्का कौन डिसाइड करता है? कि जब वो बात आएगी मेरी मनोस्थिति कैसी है। तो यहां आने से पहले किसी ने आपका बोला आपका 2023 बहुत भारी है, लेकिन आप यहां आए, आपने मेडिटेशन सीखा, ज्ञान समझा, फिर आपने इसको जाके कंटिन्यू किया, अपने माइंड को क्या बनाना शुरू किया, पावरफुल बनाना शुरू किया, अपने फिटनेस को बढ़ाया। बात जो आई वो बहुत भारी थी लेकिन फिटनेस बढ़ चुका था तो वो बात भारी लगेगी नहीं। तो इसीलिए पास्ट का विक्टिम कभी भी नहीं जीना है, हमेशा पावर लाइज इन द प्रेजेंट कर्मा, लेकिन प्रेजेंट कर्मा राइट करने के लिए पास्ट कर्मा को समझना पड़ता है, नहीं तो हम प्रेजेंट कर्मा में ब्लेम के तरह जीते हैं और फिर हमारा प्रेजेंट कर्मा नेगेटिव हो जाता है। हम दर्द में जीते हैं तो हमारा प्रेजेंट कर्मा नेगेटिव होता है। सो व्हेन आई अंडरस्टैंड आई क्रिएटेड दिस, देन आई एम फुल्ली अवेयर मुझे अब क्या भेजना है, अब क्या भेजना है। तो हमारा प्रेजेंट कर्मा कैसा होना चाहिए फिर, हमारा प्रेजेंट कर्मा फिर कैसे होना चाहिए, हमेशा कैसा होना चाहिए। अब अगर सामने से एक व्यक्ति को रखो सामने और उसकी तरफ से आपको अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपसे गलत कर रहे हैं, उनको पता नहीं आपसे क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी ऑफिस में भी होता है ऐसे कोई एक जना जिसको बिना बात के मुझसे प्रॉब्लम होती है, होते हैं ना ऐसे लोग। याद रखना हम उनको पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम उनको पहली बार नहीं मिल रहे हैं। जो भी हमारे क्लोज एनर्जी स्पेस में है हम किसी को भी पहली बार नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जिस दिन शादी भी होती है तो पंडित जी कहते हैं कितने जन्म साथ रहना, चाहे इस एक जन्म में ही अलग हो जाते हैं लेकिन रहना सात जन्म साथ है। इसका मीनिंग क्या है? डजंट मीन के सात जन्म आप हस्बैंड वाइफ बनते रहेंगे, हाउ इज दैट पॉसिबल। इट ओनली मीन्स आप इतने स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट में आ रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज कार्मिक अकाउंट ना। इसका मतलब आप पहली बार नहीं मिल रहे हैं, आप पहले भी मिले थे और आप आगे भी मिलेंगे। बट दैट इज नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, दैट इज ऑल विच इज आर क्लोज एनर्जी। चाहे वो ऑफिस में कोई हो सकता है, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली तो खैर है ही है। कई बार हमारी फैमिली मेंबर से अच्छी नहीं बनती है, और कई बार अननोन जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं है लेकिन कहते ये मेरे फैमिली से भी ज्यादा है, बोलते हैं नहीं ऐसा, ये क्यों ऐसा होता है, फैमिली फैमिली नहीं लग रही है, और कोई मेरी फैमिली नहीं है लेकिन फैमिली से भी ज्यादा है, क्योंकि ये सारी चीजें पास्ट कार्मिक अकाउंट के कैरी फॉरवर्ड है। तो किसी आत्मा के साथ मेरा पास्ट का रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, आज वो मेरे रिश्ते के नाम पर नहीं आया है, वो आत्मा मेरे सामने एक फ्रेंड के नाम पर आया है, लेकिन जैसे ही उसकी और मेरी एनर्जी सामने आती है ऐसे कनेक्ट बनता है, क्योंकि वो कनेक्ट पहली बार का नहीं है, वो कनेक्ट पहले का कैरी फॉरवर्ड है। सो ब्यूटीफुल वंस ऑल्सो एंड वन और टू डिफिकल्ट वंस ऑल्सो। तो अब ध्यान क्या रखना है, अगर वहां से कोई हमारे साथ सही नहीं कर रहा है, वो बॉल किसने फेंकी थी, अब उनको ब्लेम नहीं करना, अब अटेंशन किस पे रखना है। अगर हमारे साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा हम उनको दुआएं दे सकते हैं, अगर हमारे साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा हम उनको दुआएं दे सकते हैं, दे सकते हैं? क्या हो गया, देने या नहीं देने, देने कि नहीं देने, ये याद रखना, नो फेवर टू एनीबडी, उन पर कोई एहसान नहीं। हम किसके लिए कर रहे हैं ये, हम अपने कार्मिक अकाउंट को ठीक कर रहे हैं। और नेगेटिव मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन जब हमें बुरा लगता है वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। तो मेरे पास एक नेगेटिव एनर्जी आई, मैंने अगर हर्ट क्रिएट की वो भी नेगेटिव है, मैंने पेन क्रिएट किया वो भी नेगेटिव है, मैंने हेट्रिड क्रिएट किया वो तो बहुत नेगेटिव है। लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव आया और मैंने फिर से नेगेटिव क्रिएट कर दिया तो फिर से क्या आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर मैं नेगेटिव भेजूंगी, फिर नेगेटिव आएगा, एंड देन दैट नेगेटिव विल कीप गेटिंग वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। ऑप्शन क्या है मेरे पास, अब ऑप्शन क्या है, वो आपको याद है जो महाभारत और रामायण में टीवी पर दिखाते थे, यहां से एक वेपन आएगा, देख लो सामने से कौन सा वाला आ रहा है, हमें उससे ज्यादा पावरफुल वाला भेजना है, और उससे ज्यादा पावरफुल वाला भेजकर उसके वेपन को बीच में क्या कर देना, दैट इज व्हाट, पूरा पूरा एपिसोड वही चलता रहता था, इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है, उधर खत्म करो, खत्म ही नहीं होता, इधर से आ रहा है, दैट्स लाइफ, इधर से एनर्जी आएगी इधर से भेजनी है, इधर से आएगी इधर से भेजनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है ऐसी एनर्जी नहीं भेजनी जो इनकी एनर्जी और स्ट्रांग हो जाए, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव नहीं ऐड करना है, उनके नेगेटिव को मिडवे क्या करना है, फिनिश करना है। तो वो सिर्फ तब हो सकता है कि जितना उनका नेगेटिव है और वो भी उनका नेगेटिव नहीं है, किसका भेजा हुआ नेगेटिव है, मेरा भेजा हुआ नेगेटिव है। जितना वहां से नेगेटिव आ रहा है मुझे उससे कई गुना ज्यादा दुआएं देनी पड़ेंगी टू न्यूट्रलाइज दैट कार्मिक अकाउंट। और इसीलिए जिसने ज्यादा गलत किया उसके लिए ज्यादा दुआएं हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ किया तो वो एक आधी बॉली है, एक फेंकेंगे ठीक हो जाएगा, कहीं से कंटिन्यूस आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब मैं बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करके आए हूं वहां पर, मुझे उस कार्मिक अकाउंट को अब क्या करना है, सेटल करना ही है। बहुत सारी चीजें जब हम सेटल नहीं करते हैं, वी हैव टू रिमेंबर वी आर गोइंग टू मीट अगेन एंड एवरी नेक्स्ट मीटिंग बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। इट्स लाइक आप दो लोग मिले, बात कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट हुई, घर गए, अगले महीने फिर मिले तो फिर वो आर्ग्यूमेंट पे स्टार्ट किया तो और मुश्किल हो गया, फिर उसकी बार अगली बार मिले तो बात ही नहीं की, तो एवरी नेक्स्ट मीटिंग बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, एवरी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम दैट कार्मिक अकाउंट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो अब अपने कर्मों के हिसाब किताब को कैसे करना, क्या करना, करेंगे सेटअप तो हम कहते हैं वहां से ब्लैक बॉल आ रही है, हमने यहां से व्हाइट बॉल भेजनी है, बस ये फिगर सामने याद रखना है। एंड व्हाइट बॉल मतलब व्हाइट एनर्जी, दुआएं। सबसे पहली दुआ ये होती है कि उनको क्वेश्चन नहीं करो मन में, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव एनर्जी बिकॉज वी डोंट लाइक देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग। इमीजिएटली माय कार्मिक अकाउंट। एंड सबसे पहली चीज, एक्चुअली जो हमारे साथ गलत अभी कर रहे हैं हमें मन में, शब्दों में नहीं जाके बोलना क्योंकि उनको नहीं पता वो बात, हमें मन में हमें उनको सॉरी बोलना है। क्यों हमने उनको सॉरी बोलना है, क्यों हमने सॉरी बोलना है, क्योंकि अभी वो जो चीख रहे हैं वो चोट हम देकर आए थे, नहीं तो वो आज चीख रहे ही नहीं होते, मतलब दे वुडंट बी एनीथिंग नेगेटिव। तो लेट्स क्लोज आर आईज एंड डू दिस कार्मिक अकाउंट राइट नाउ, सामने लेकर आइए उनको, चेहरों को नहीं, रोल्स रिश्तों को नहीं, जब ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ था तो ये रिश्ता नहीं था, ये चेहरा नहीं था, मेरा भी ये नहीं था, इट वॉज ओनली बिटवीन अ सोल एंड अनदर सोल, ओनली बिटवीन अ सोल एंड अनदर सोल। तो जस्ट अपने को देखें, मैं आत्मा, सामने उनको लेकर आए, जस्ट अ सोल। आज मुझे समझ मिली है कि जो भी हो रहा है वो मैंने कभी ना कभी वो कर्म किया था, तो मैंने आपको पास्ट में जो दर्द दिया उसके लिए आई एम सॉरी। पास्ट में मुझे याद नहीं है लेकिन आपको चोट लगी है तो मतलब मैंने कुछ किया था, तो मैंने आपको पास्ट में जो दर्द दिया था उसके लिए सॉरी। आज आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए क्षमा, आई फॉरगिव। मैंने जो पास्ट में किया था उसके लिए आई अपोलोजाइज। आज आप जो कर रहे हैं उसके लिए आई फॉरगिव। पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर। आज से आपके और मेरे बीच एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू होता है। मेरी तरफ से आपके लिए आज से, अभी से, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। सॉरी फॉर द पास्ट, फॉरगिवनेस इन द प्रेजेंट, पास्ट कार्मिक अकाउंट ओवर, न्यू कार्मिक अकाउंट ओनली ऑफ ब्लेसिंग्स। सिर्फ चार संकल्प सिर्फ 4 संकल्प इस कार्मिक अकाउंट को चेंज कर देंगे। ओके, वापस आइए। आपको एनर्जी दिखाई दे रही है, क्या हो रहा है? अब ये करने से हमने क्या किया, वहां से ब्लैक आ रहा है लेकिन यहां से व्हाइट जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला संकल्प करते ही वहां से आना बंद हो जाएगा, वहां से तो अभी आने वाले हैं। मुझे पता नहीं है हम कितने फेंक कर आए हैं, लेकिन जहां जैसे ही वहां से ब्लैक आया और हमने व्हाइट भेजना शुरू किया है, सबसे पहले कौन बच जाएगा? अब हम, क्योंकि पहले हम ब्लैक के रिटर्न में ब्लैक भेज रहे थे। बच्चा होकर ऐसा किया, मैंने उसके लिए इतना किया, आज वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। प्लीज रिमेम्बर, वो बच्चा, वो भाई, वो बहन, वो बेटा, वो पति, वो पत्नी, वो सोल ऑन अ जर्नी है। हम कहते बाहर वाला कोई करता तो कोई बात नहीं, घर वाले ऐसा करते हैं। भाई जिनके साथ हम पास्ट कार्मिक अकाउंट करके आए हैं वो नजदीक ही आएंगे ना, कहीं पड़ोस में रह के कैसे करेंगे सेटल? वो तो उनको किसके घर आना पड़ता है, किसके घर आना पड़ता है? हमारे घर ही आना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मार्क्स नहीं। तो जैसे ही मैंने वो अंडरस्टैंडिंग से व्हाइट बॉल भेजी ना, मेरे यहां का बहुत सारा पेन वैसे ही सेटल होने लग जाता है। फिर सेकंड, मेरी व्हाइट बॉल उनकी तरफ जा रही है अब कंटिन्यूअसली, उनकी तरफ जा रही है। पहले मेरी ऑपोजिट जा रही थी, आपने ऐसा कैसे किया आप, तो मैं ब्लैक पे और फेंक रही थी ब्लैक, तो उनकी चोट क्या होने वाली थी? तो जस्ट विजुअलाइज फिजिकली कि हमने किसी को मारा, उनको चोट लगी यहां, हमें हीलिंग करनी चाहिए थी लेकिन हमने चोट को क्या करते गए, ऐसे करते गए, तो वो चोट बढ़ती गई, तो उनका चीखना, उनका वो पेन और बढ़ता गया। एंड पेन कुड कम इन द फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन, अब्यूज, रिजेक्शन, कोई भी तरह से बिहेवियर करेगा सामने वाला। हम चोट को रब कर रहे थे, चोट को रब नहीं करना है, चोट को हील करना है। इसीलिए जिनकी भी तरफ से आपके पास ब्लैक बॉल आ रही है, सपने में भी उनको ब्लैक बॉल नहीं भेजो, क्योंकि वहां का मल्टीप्लाई होगा पेन फिर। तो यहां से जब व्हाइट जाएगा, पहले हम प्रोटेक्टेड, फिर व्हाइट जाते 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 वेरी सून, नॉट मैजिकल बट वेरी सून यू विल सी देम स्टार्ट शिफ्टिंग। जाना ही है, इट इज वाइब्रेशन। अगर आज आप यहां आते ही इमिजिएटली अपने अंदर एक वाइब्रेशन शिफ्ट महसूस करते हैं, इट इज वाइब्रेशन, तो वो आपकी वाइब्रेशन से शिफ्ट क्यों नहीं होंगे? होना ही है, होना ही है, है ना रमेश भाई? एक्सपीरियंस किया, होता ही है, हैं जी? सफेद बॉल, हाँ देखो एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, सिर्फ सफेद फेंको, उसके बाद सफेद आनी भी शुरू हो जाती है। तो पहले हमने ब्लैक फेंकी थी, ब्लैक आई, अब हम क्या करते हैं, अनअवेयर फिर से ब्लैक फेंकते, तो फर्स्ट दैट स्टॉप, फिर व्हाइट फेंकी तो खुद का दर्द कम होगा, फिर व्हाइट फेंक कर उधर जाएगी, उनके दर्द को ठीक करने लगेगी, और फिर बहुत जल्दी वहां से व्हाइट आनी शुरू होगी। मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड, लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं पूरी तरह से, उनको खुद को भी नहीं पता होता वैसे वो क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि उनकी वूंड की हमने हीलिंग की है। हम सबको पता है ना, रेखी होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, होती है ना, काम करती है वो नहीं करती है? करती है। कोई कहां बैठा है, कोई कहां बैठा है, वो उसको डिस्टेंस हीलिंग करता है, और उसके वूंड, उसकी बॉडी का जो ब्लॉकेज है, उसकी एनर्जी चेंज होती है। अगर दूर बैठकर शरीर की एनर्जी चेंज की जा सकती है, तो फिर दूर बैठकर यहां की एनर्जी नहीं चेंज की जा सकती है। सो दिस इज हीलिंग फ्रॉम द माइंड। तो इजी, कल के 3 स्टेप्स क्या थे? आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, आई ब्लेस, 3 थॉट्स। आज के 4 थॉट्स क्या है? सॉरी फॉर द पास्ट, और ये सॉरी फॉर द पास्ट फिर रोज नहीं बोलना, ये तो बस थोड़े दिन ही, क्योंकि अभी तक बहुत क्वेश्चन किया है ना उनको हमने बहुत दिनों से। तो सॉरी फॉर द पास्ट, फॉर गिविंग यू फॉर द प्रेजेंट, आज आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूं। तीसरा, ये जो बहुत जरूरी है बोलना, ये किसी भी चीज के लिए बोलना है, रिश्तों के लिए, कोई काम कारोबार में तकलीफ, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, ये संकल्प बार बार बोलना है, क्योंकि जो मेरे लाइफ में चैलेंज आया है, प्रॉब्लम आया है, वो पास्ट कार्मिक अकाउंट है और मैंने उसको क्लोजर की एनर्जी देनी है कि पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर। वो खत्म होगा किसी भी तरह, क्योंकि हम संकल्प कर रहे हैं कि इट्स ओवर, हम संकल्प कर रहे हैं इट्स ओवर, तो उसको ओवर होना ही पड़ेगा, किसी भी विधि से हो जाएगा वो। पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर एंड न्यू कार्मिक अकाउंट में सिर्फ दुआएं दुआएं दुआएं। इजी चार थॉट्स, ये इजी हैं चार थॉट्स, करना जरूर। किसी कार्मिक अकाउंट को पेंडिंग नहीं रखना, किसी कार्मिक अकाउंट को नेगेटिव नहीं चलना। दुनिया में आज हम बहुत मुश्किल चीजें देख रहे हैं होते हुए, अचानक कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, हम कहते कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है। वो इसलिए कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ऐसा क्योंकि वो कई कॉस्ट्यूम्स लेते लेते अपने कार्मिक अकाउंट को क्या करते हुए आए हैं, बहुत 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 कॉम्प्लिकेट करके आए हैं। नहीं तो कोई भी किसी के साथ कर ही नहीं सकता। लाइफ इज नॉट अनफेयर, लाइफ इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। इसीलिए गीता सार लगा होता है ना घर में, उसमें क्या लिखा होता है, जो हुआ क्या लिखा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा। अब हम वो पढ़ते हैं, लाइफ में इतना कुछ गलत हो रहा है, हम कहते हैं ये कैसे लिखा है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, जो हुआ वो कर्मों के सिद्धांत अनुसार सही था, जो हो रहा है वो भी सही है और जो होगा वो भी सही होगा। उसको पकड़ के रखते हैं तो यहां से एनर्जी चेंज हो जाती है। अब इस पिछले 2-3 साल में स्पेशली कोविड की वजह से हम सब जानते हैं किसी को जिन्होंने अपना कॉस्ट्यूम छोड़कर आगे गए हैं। और जब फैमिली में घर में ऐसी बात आती है तब तो परमात्मा पर अपने भाग्य पर बहुत क्वेश्चन मार्क होने लगते हैं। और फिर हम उस सिचुएशन में जब कर्मों के सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। पहली बात याद रखना कि किसी का अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके आगे जाना वो हमारे लिए दर्द हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो कार्मिक अकाउंट गलत था। कार्मिक अकाउंट अच्छा एंड बुरा डजंट डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ दैट कार्मिक अकाउंट, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट कार्मिक अकाउंट। कोई 100 साल इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन रोज अच्छे से लड़ रहे हैं, कार्मिक अकाउंट लंबा है लेकिन भोगना वाला कार्मिक अकाउंट है, तो उसको हम कहेंगे ये कार्मिक अकाउंट बहुत भारी है, इनका रोज इनका संघर्ष चल रहा है, रोज इनका संघर्ष चल रहा है। लेकिन लंबा जी रहे हैं एक दूसरे के साथ 100 साल, लेकिन कार्मिक अकाउंट भारी है। और कोई हमारे साथ 20 साल 30 साल सिर्फ उतना ही रहे लेकिन फिर आगे गए, लेकिन वो 20-30 साल बहुत ब्यूटिफुल, तो उस कार्मिक अकाउंट को क्या कहेंगे, उस कार्मिक अकाउंट को क्या कहेंगे। हम कहते हैं मैंने क्या ऐसा गलत किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ, वो गलत नहीं है। उसको गलत बोलकर हम उस कार्मिक अकाउंट पे गलत एनर्जी लगा रहे हैं। सिर्फ उस कार्मिक अकाउंट की ड्यूरेशन कम थी, नॉट क्वालिटी। सो नेवर फील कि मैंने कुछ गलत किया है इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। हर एक आत्मा जब एक कॉस्ट्यूम लेती है, जैसे आप यहां आए, आप अपनी रिटर्न टिकट बुक करके आए हैं ना, एंड आपको बहुत क्लियर है जिसको मंडे जाना है उसको मंडे जाना है, जिसको ट्यूसडे जाना है उसको ट्यूसडे। हर एक ने अपनी प्लानिंग करके अपनी टिकट बुक की है। अब अगर हम आज आपको कहें कि नहीं भाई आप यहां आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्लीज कल मत जाओ, तो आप कहेंगे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब मेरा नेक्स्ट काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहां के 3 दिन अच्छे नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहां रहकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि 3 दिन के बाद मेरे पास और कुछ इंपॉर्टेंट काम है जहां मुझे जाना ही है, और वो मैं अपना काम फिक्स करके आया हूं बाय माय कार्मिक अकाउंट। तो जितना भी मेरा मन हो रहने का कल यहां, आई कैन नॉट स्टे। ये भगवान नहीं डिसाइड करता है। आप कल जा रहे हैं ये भगवान ने डिसाइड किया या आपने डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया? हर चीज हम ही डिसाइड करते हैं. सो जस्ट बिकॉज समवन लीव्स अर्ली, नेवर एवर कॉल इट कि मैंने कुछ गलत किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है. बोलो मैंने कितना अच्छा किया होगा, कौन से पुण्य किए होंगे कि ऐसा फरिश्ता मेरे साथ 20 साल 30 साल रहा. जल्दी गया वो मुझे दर्द है, फाइन वो दर्द है, लेकिन डोंट कॉल दैट कर्मा और रॉन्ग कर्मा. फिर हम एक बहुत ब्यूटीफुल कर्मा पर बिना बात के दाग लगाते हैं. बोलो परमात्मा का शुक्रिया, मेरे कर्मों का शुक्रिया कि मेरे पास इतना अच्छा प्यारा सा फरिश्ता आया. अब उस फरिश्ते ने कोई और सेवा चूज की है तो फिर जो फरिश्ता आगे जा रहा है हमें उसको किसके साथ भेजना है, किसके साथ भेजना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. हम जीवन में एक दूसरे के लिए बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, मतलब अपना सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो हमें दूसरे के लिए करना है वो उस टाइम होता है जब वो आत्मा अपना कॉस्ट्यूम छोड़कर आगे जाती है. अब आप सिर्फ विजुअलाइज अपने को करिएगा कि आपने ये शरीर छोड़ा, आप आगे गए, आपका कनेक्शन तो इन्हीं फैमिली के साथ है, राइट? अभी तो दूसरों को जानते भी नहीं है, हम वहां जा गए. तो जैसे हम अभी एक दूसरे की एनर्जी फील कर सकते हैं, वैसे ही जब आत्मा शरीर छोड़ती है उसकी कैचिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है, बिकॉज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है वो. हमारी मतलब पीछे रही हुई फैमिली की सारी वाइब्रेशंस कैच कर सकती है. अब सिर्फ अपने आप को देखिए कि अगर हम मूव ऑन करें तो हम पीछे क्या देखना चाहेंगे, हम पीछे क्या देखना चाहेंगे. सीरियसली मूव ऑन करो, अभी निकालो अपने आप को इस शरीर से, आगे लेकर जाओ, पीछे परिवार को मुड़कर देखो, आप क्या देखना चाहेंगे, पीछे सब कैसे हैं, पीछे क्या देखना चाहेंगे, बोलिए. सबको क्लियर होना चाहिए कि हरेक क्या देखना चाहता है, पीछे सब कैसे हैं, पीछे सब ठीक है. अगर आप रोज सुबह ऑफिस के लिए भी निकलते हो ना तो भी आप वहां से फोन करके पूछते हो सब ठीक है. हरेक को एक ही चीज चाहिए कि सब ठीक है, पीछे सब ठीक है. एक ये गिफ्ट उनको देनी है जो आगे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो जहां जा रहे हैं एक नया कॉस्ट्यूम, एक नई फैमिली, एक नई डेस्टिनी, उनका सब नया खड़ा क्रिएट होने वाला है. उस नए क्रिएशन में हमारी तरफ से वाइब्रेशन कौन सी जानी चाहिए, हमारी तरफ से वाइब्रेशन कौन सी जानी चाहिए, सिर्फ ब्लेसिंग्स के. हम यहां से कौन सी थॉट्स भेजते हैं, ऐसे कैसे आप चले गए, हमें छोड़ के चले गए, वी आर फीलिंग बैड, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट राइट नाउ थिंक अबव योर पेन एंड थिंक ऑफ हाउ टू हील देम. लेकिन ऐसा कोई संकल्प ना करें जिससे जाने वाले को दर्द और बढ़ जाए. हमेशा याद रखना है हमने अपना सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर शायद खोया होता है, लेकिन उस मेंबर ने तो अपनी पूरी फैमिली खोई होती है. हमारे पास अभी भी 2-3 लोग हैं ना अपने आसपास, है ना, लेकिन जो आत्मा शरीर छोड़ती आगे जाती है उसके पास तो कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है. वो अपना फैमिली भी खोते हैं, अपना शरीर, अपना सब कुछ एक सेकेंड में, दे लूज एवरीथिंग, एंड दैट इज वाई फॉर मोस्ट पीपल डेथ इज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. इसीलिए भी स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करती है, क्योंकि जब पूरा जीवन इस कॉन्शियसनेस से जिएंगे, मैं आत्मा हूं, इस शरीर में हूं, कल्चर, जाना बहुत इजी हो जाता है. जाना भी बहुत इजी होता है और कोई और जा रहा है तो उसको भी प्यार से भेजना बहुत इजी हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं उनकी याद नहीं आती है, लेकिन याद दर्द वाली नहीं, प्यार और दुआओं वाली याद से भेजते हैं. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी रोज सोल कॉन्शियसनेस हमें इस बॉडी और इन अटैचमेंट से थोड़ा सा ऊपर उठाती है. जो रियलिटी हमें पता है वो रोज याद रहती है. तो उनको कैसे भेजना है, कैसे भेजना है उनको. अब इसमें भी संकल्प करो, फर्स्ट संकल्प, तुम मेरी चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक है. से दिस, यू डोंट फील लाइक सेइंग इट बट से इट, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो वहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है. और बोलते बोलते हम अपने को ठीक करेंगे, लेकिन रोज बोलेंगे नहीं, मैं नहीं ठीक रह सकती, तुम कैसे ऐसे मुझे छोड़ के गए. एंड सबसे सबसे डेंजरस लाइन, तुम वापस आ जाओ, तुम्हें वापस आना पड़ेगा मेरे पास। आप विजुअलाइज करेंगे, आत्मा वहां गई, गर्भ में प्रवेश किया और पूरी पीछे वाली फैमिली कहती है तुम वापस आ जाओ। तो वहां क्या हो जाता है, वहां क्या हो जाता है, होती है ना चीजें ऐसे, ये सब इसीलिए होती है क्योंकि पीछे वाली आत्मा ने कहा वापस आओ वापस आओ वापस आओ। तो हम उनको खींच रहे हैं, हम उनको पुल कर रहे हैं। हमें क्या करना है, उनको हमेशा याद रखना है जो आत्मा आगे जाती है ना उसका आगे जाने का कोई मन होता नहीं है, दे वॉन्ट टू बी ओवर हियर। हमें ही उनको प्यार से क्या करना पड़ेगा, बोलो जाओ जाओ, अभी तुम्हारा कॉस्ट्यूम नहीं है, अभी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाना है। हमारा मन नहीं कर रहा है भेजने का, लेकिन उनके अच्छे के लिए उनको बोलकर भेजना है। ये वो एक समय होता है जहां अपने दर्द से ऊपर उठकर दूसरे के अच्छे के लिए सोचना है। सारी जीवन उनके लिए ही सोचा था, बस लास्ट एक बार जरूर उनके लिए सोचना है। इस समय गलती नहीं करनी, उनको ऐसा दर्द नहीं देना है, उनको बुरा नहीं फील कराना है कि वो हमें कितना दुख दे रहे हैं। अगर आप घर से जाते हो और आपका बच्चा पीछे रोता रहता है, होता है ना वर्किंग मदर घर से निकलती है सुबह, बच्चा रोता रोता है, तो वो मदर को बहुत गिल्ट होता है कि मैं बाहर हूं ना, बच्चा रोता जा रहा है। ऐसे ही जो आत्मा आगे जाती है उसको कितना गिल्ट होता है कि मेरा परिवार रो रहा है, अभी तक मेरे परिवार ने खाना भी नहीं खाया, मेरा परिवार सो भी नहीं रहा ठीक से, मेरा परिवार जी नहीं रहा ठीक से, मैं कारण हूं इसका, मैंने इनको इतना दर्द दिया है। क्या हम उसकी जर्नी गिल्ट पर, पेन पर ऐसे पे खड़े करने हैं? नहीं, ब्लेसिंग्स पर। लेकिन हमें याद नहीं था ना आत्मा है, तो हम कहते थे वो नहीं रहे और हमें लगा वो तो चले गए, हम ही सिर्फ दर्द में है। हमारे से ज्यादा दर्द है उधर, हमारे से कई गुना ज्यादा दर्द है। इसीलिए गर्भ में, गर्भ की जो जर्नी होती है मदर्स की, इट्स सिंपल फॉर सम बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मेनी। कहते पता नहीं आज मेरा मन ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मुझे आज से कुछ खाया क्यों नहीं जा रहा। खाया कब नहीं जाता है, खाना जब मन उदास होता है, बट मदर तो बहुत हैप्पी है, उदास कौन है? क्यों वो मदर से खाना नहीं खाया जा रहा होता? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा आई है दूसरी, वो बहुत उदास है। क्यों वॉमिटिंग हो रही है, क्यों नौशिया हो रहा है, कब होता है? जब मन स्ट्रेस्ड होता है। मदर तो बहुत हैप्पी है लेकिन वो सोल जो आई है वो सैड है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस आत्मा को क्या करना है, क्या करना है, यहां से एनर्जी दे दे के अगेन संकल्प, फर्स्ट संकल्प, तुम हमारी चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम एक दूसरे का बहुत अच्छा सा ध्यान रख रहे हैं सबका, तुमने हमारी चिंता नहीं करनी है। बोलते जाओ, बिना फील किए बोलते जाओ, बोलो। एटलीस्ट ये बोलते हुए ये तो नहीं बोलेंगे ना हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, काउंटर स्टेटमेंट तो नहीं भेजेंगे ना। तो बिना फील किए बोलते जाओ, तुम हमारी चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक है, हम सब एक दूसरे का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। अब शिकायत की बजाय कि तुम ऐसे कैसे चले गए, शुक्रिया, शुक्रिया फॉर दैट एवरी मिनट दैट यू हैव लिव्ड विद मी, शुक्रिया। तो हम नहीं रह सकेंगे कि जगह, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। शिकायत कि तुम क्यों चले गए, शुक्रिया कि तुम इतने क्षण हमारे साथ रहे, शुक्रिया फॉर, ऑलवेज सेंड समबडी विद ग्रैटिट्यूड। कोई आपके घर आता है, दो घंटा आपके साथ बैठता है, लेकिन फाइनली उसको जाना है, तो जाते हुए हम उसको शुक्रिया बोलते हैं ना, शुक्रिया आप आए, आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। हम ये तो नहीं बोलते शिकायत, ऐसे कैसे आप जा सकते हो, नहीं, शुक्रिया। तो सेकेंड थॉट इज ऑफ शुक्रिया, शुक्रिया हर क्षण आपने साथ हमारे को कितना सुख दिया है, कितना प्यार दिया है, हमारी जीवन का गिफ्ट है आप, हमारे लाइफ का फरिश्ता है आप। ये एनर्जी उस आत्मा की नई डेस्टिनी की फाउंडेशन बन रही है। कभी ये थॉट नहीं क्रिएट करना हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, बहुत गलत थॉट है, क्योंकि सामने वाले की प्रोग्रामिंग में चली जाएगी, मेरी फैमिली ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये रिकॉर्डिंग उसकी नई फैमिली की डेस्टिनी के साथ आएगी। वो अपने लोगों को देखेगा, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने मेरे लिए कुछ। पेरेंट्स कहेंगे इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, इतना कुछ हम इसके लिए करते हैं। लेकिन वो गर्भ में रिकॉर्डिंग हुई थी कि मेरी फैमिली ने जब मुझे जरूरत थी तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो क्योंकि इस समय जो जा रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। यू विजुअलाइज कि आपकी थॉट्स उसकी सीडी पर रिकॉर्ड होती जा रही है। तो कभी भी ये गिल्ट, क्योंकि बात तो सच ही नहीं है, कौन है जो अपने परिवार के लिए नहीं करता। कोविड में बहुत लोगों ने ये थॉट क्रिएट किया, हमने आपके लिए ठीक से नहीं किया, हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था, हम इधर नहीं उधर चले जाते। नहीं, हमने सबने अपना बेस्ट किया था। हमने आपके लिए नहीं किया तो सिर्फ कोई वो रेयर होता है जो जानबूझकर गलत करे, कौन ऐसे करेगा फैमिली के साथ। तो गलत थॉट नहीं क्रिएट करना, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं। All that is when in the present. After that, full stop. So, ये thought नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया। और तीसरी thought, हमारी तरफ से आपके लिए हर क्षण प्यार और दुआएं। आपका मन सदा खुश, आपका नया शरीर सदा हेल्दी। आप जहां गए हैं वहां कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आप। यहां से अगर जल्दी गए हैं तो कोई बड़े काम के लिए गए होंगे, ना होता तो जल्दी ना जाते। तो आपको बहुत सारी दुआएं, आपका मन सदा खुश रहेगा, सबको सुख देगा, आपका शरीर सदा स्वस्थ होगा, आपके संस्कार तो है ही प्यारे, और आप सबको सुख देने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए गए हैं। इतनी ऊंची दुआएं दो उसको, आप सत्युग बनाने के लिए गए हैं, इतनी ऊंची दुआएं दो, क्योंकि आपकी दुआएं उसके भाग्य का हिस्सा बन रही हैं अभी। और जैसे जैसे आप ये करेंगे उस आत्मा पर ये रिकॉर्डिंग होती जा रही है, दैट इज सर्टन। और ये रिकॉर्डिंग जब वहां होती जाएगी उनकी नई डेस्टिनी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। और यही रिपीट करते करते आपके अंदर जो ट्रॉमा क्रिएट हो चुका है वो रिलीज होता जाएगा। हम सदा याद रखेंगे और बहुत प्यार से याद करेंगे, लेकिन प्यार वाली याद और दर्द वाली याद में फर्क होता है। प्यार वाली याद वहां भी प्यार भेजती है और दर्द वाली याद वहां भी दर्द भेजती है, और यहां भी बाकी सब जो हमारे साथ है उनको भी दर्द देती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है कि खुद कैसे शरीर छोड़ना है वो भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट पेंडिंग नहीं होना चाहिए कि जाते समय वो मुझे खींचे। इसीलिए जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो पंडित जी डंडी देते हैं वो तोड़ने के लिए, वो अंतिम। उसका मीनिंग क्या है, मेरा आपका कार्मिक अकाउंट फिनिश्ड। बट वो सिंबॉलिक है, डंडी टूटने से तो नहीं होगा ना कुछ भी, बट वो सिंबॉलिक है कि जीवन ऐसा जीना है कि कोई लेन देन कर्मों की हर एक के साथ। दुआएं दो, क्षमा करो। इसलिए रोज रात को, वैसे तो रोज सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन रोज रात को सोने से पहले अपनी बैलेंस शीट अच्छे से चेक करनी है। आज अगर मेरे से कोई गलत बिहेवियर हुआ, आज अगर मेरे से कोई मैंने गलत किसी के लिए सोच लिया, सोच का रात को सोने से पहले उनसे क्षमा जरूर मांगो, वहीं के वहीं सेटल करो। आज अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, सोने से पहले ही उसको फॉरगिव करो, ताकि उसका कर्म का भार भी कम हो। शुक्रिया करो। अपनी बैलेंस शीट को रोज रात को चेक करके सोना है। किसी के प्रति मन पर कुछ पकड़ के नहीं रखो, हमारे साथ आगे जाता है। हम कहते हैं ये बात तो मैं कभी नहीं भूल सकती, अगर नहीं भूले तो वो साथ जाएगी आगे, और जब साथ जाएगी तो तंग करेगी आगे, तंग करेगी तो हम कहेंगे मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो रोज हर ट्रांजैक्शन को क्या करो, सेटल रखो। इसीलिए डेली मेडिटेशन, डेली ये स्पिरिचुअल स्टडी, जब रोज 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 ये जाती है ना, तो रोज के रोज ये सब सेटल होता रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने प्रेजेंट कर्मों पर अटेंशन रहती है। और प्रेजेंट कि भले सामने से कोई कुछ भी गलत करे, मुझे गलत नहीं सोचना है, बस वो अटेंशन रखनी है। तो रोज उसको ट्रांजैक्शंस को सेटल करो। अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स को हाईएस्ट ले जाओ। और अपने जीवन में सेवा का एक एलिमेंट रखो। जब भी जन्मपत्री में कुछ भारी होता है तो जब हम उनसे उपाय पूछते हैं तो वो कुछ ना कुछ दान करने के लिए बोलते हैं ना, कहते हैं दान करो तो ग्रहचारी टूटेगी। तो दान करो का मीनिंग क्या है कि जीवन में ऐसे कर्म करो जिससे दुआएं आएंगी। तो दुआएं हमें वो ताकत देती हैं जिससे हम अपने कर्मों को क्या कर सकते हैं, सेटल। तो हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सेवा, एक होता है मन से सारा दिन सेवा, सबको दुआएं देनी है, और एक होता है तन से, धन से, मन से, वाणी से, चार प्रकार से सेवा होती है। तन से मतलब फिजिकली कुछ किया, मन से तो सारा दिन दुआएं, वाणी से मतलब आपको कुछ आता है शेयर करो, आपका कोई एक्सपीरियंस है शेयर करो। किसी के साथ शेयर करने से पता नहीं है सामने वाले के जीवन में चेंज आ जाएगा। मैंने अगर कर्म किया और सामने वाले के जीवन में चेंज आया तो वो मेरे अकाउंट में जमा हो जाने वाला है। जीवन को ऐसे नहीं जीना है मेरे लिए, जीवन को ऐसे जीना है। तो तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, वाणी से सेवा करें, धन से सेवा करें। अपनी चारों एनर्जीज को सेवा में लगाएं तो चारों एनर्जीज के कार्मिक अकाउंट क्या होते जाएंगे, कार्मिक अकाउंट फिर भी आएगा। जो बॉल फेंक दिया वो वापस तो आनी आनी है, वो बीच में नहीं रुक सकती कहीं भी, लेकिन जब वो वापस आएगी मुझ आत्मा के पास ताकत होगी कि मुझे उसकी सफरिंग कम, मतलब कार्मिक अकाउंट सेटल्ड, चुक दो। तो स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन क्या करता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। सामने वाली बॉल फिर भी आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो मुझे उसको फेस करने की ताकत बढ़ी हुई होगी। तो बात फिर भी आएगी लेकिन सफरिंग कम। एंड सोल कॉन्शियसनेस हमें डिटैचमेंट पर लेकर जाती है, यही पर्पस है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का, डिटैचमेंट। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म होता है, डिटैचमेंट का मतलब है प्यार अनकंडीशनल हो जाता है। आपको यहां इतने सब लोग मिल रहे हैं, वो आपको जानते नहीं, आप उनको जानते नहीं, कोई रिश्ता तो है नहीं, अटैचमेंट तो खैर बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उनसे अच्छी एनर्जी मिल रही है ना। वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो आपसे डिटैच्ड है। डिटैचमेंट एक पावर है, एंड डिटैचमेंट का मीनिंग सिर्फ एक है कि मेरे मन की स्थिति आपकी स्थिति से अटैच्ड नहीं है। आप अगर गलत भी करेंगे तो भी आई विल थिंक राइट अबाउट यू, दैट इज डिटैचमेंट, एंड डिटैचमेंट इज पावर। और डिटैचमेंट अपने बारे में नहीं सोचती है, सामने वाले के बारे में सोचती है। डिटैचमेंट हमें सेल्फलेस बनाना शुरू करती है, क्योंकि डिटैचमेंट मीन्स सोल पावर इंक्रीजेस ना। तो सोल पावर बढ़ेगी तो मेरा क्या होगा, नहीं आपका अच्छा हो। हमारे पास सेंटर पे एक माताजी आती हैं, शी इज अबाउट 70 आई थिंक। उसको कैंसर हुआ उनको, और फिर जब उनकी कीमो चल रही थी तो उनकी डॉटर को कैंसर हुआ, और डॉटर के दो बच्चे हैं आगे। फिर वो अपना करके उनके पास गई बॉम्बे, उनका इलाज कराया, फिर उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ वो डॉटर को, और वो लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कहा नाउ वी कांट डू एनीथिंग, सो शी कॉल्ड द एंटायर फैमिली लाइक दैट एंड शी सेड मेरी बेटी सफर कर रही है। और डॉक्टर ने कहा अब तो ये ठीक नहीं हो सकता है, ये जो हमारी अटैचमेंट है ना, ये इसको जाने नहीं दे रही आगे। तो हमें इसको प्यार से क्या करना है, जाने के लिए कहना है, इसको छुट्टी देनी है ताकि ये जाए। एवरीबडी वॉज वेरी अनहैप्पी, वेरी एंग्री विद हर। वो वैसे ही खुश नहीं थे, वो यहां आती थी, और फिर उन्होंने कहा हाँ जहां जा रही है ना वहीं से ये सब उलट पुलट सीख कर आती है कि जाने दो उसको, भेज दो उसको, ऐसे कौन करता है। सो शी सेड ओके, सो शी सेंड एवरीबडी आउटसाइड, शी सैट अलोन विद हर डॉटर, फर्स्ट शी सैट एंड स्पोक टू हर एवरीथिंग। जबकि वो डॉटर तो कॉन्शियस नहीं है, बट हमेशा याद रखना जो कॉन्शियस नहीं है वो आपकी थॉट्स को पहले से ज्यादा अच्छा कैच कर सकता है। उसका सिर्फ ब्रेन एंड सोल का कनेक्शन टूटा हुआ है, सोल बिल्कुल परफेक्ट है। तो आत्मा गर्भ में सब कुछ कैच कर सकती है, आत्मा कोमा में सब कुछ कैच कर सकती है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है वो सब कुछ कैच कर सकती है, आत्मा जब शरीर में होती है तब कम कैच करती है, जब डिटैच हो जाती है तो सब कुछ कैच करती है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं जो चला गया उसके बारे में बुरा नहीं बोलना, क्योंकि अब वो सुन सकते हैं, आप जो बोलेंगे वो सब सुन सकते हैं, इसलिए कभी बुरा नहीं बोलना जाने वाले के बारे में। तो इसीलिए फिर उसने क्या किया, उनके साथ बैठी, उसके साथ बातें की, जो भी बोलना था वो सब बोला, और फिर उसको बोला मुझे पता है तू क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि तुझे बच्चों की चिंता है ना, तो चिंता नहीं करना, हम बैठे हम सब उसका ध्यान रखेंगे, तू जा अभी, ये तेरा शरीर अच्छा नहीं है। शी केप्ट टॉकिंग टू हर लाइक दैट एंड देन शी जस्ट हेल्ड हर हैंड एंड शी सैट इन मेडिटेशन। बाबा की शक्ति इस आत्मा पर, आत्मा तुम जाओ अभी यहां से। Within 15 minutes, that soul left. And she would have probably stayed in that body for much longer. That is power. And this is very simple. ऐसे लगे नहीं, it's very simple. And ये हम सबके जीवन में, आप सबने अनुभव किया होगा कि कोई कभी होता है बहुत बीमार है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन शरीर नहीं छोड़ते हैं, उनके घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो पूरी हो जाती है ना उस रात, फिर वो जाते हैं। देखा है या नहीं देखा है? क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके जाने से सब गड़बड़ हो जाएगा उनका फंक्शन, तो वो रुकते हैं, वो जाते हैं जब वो, बिकॉज दे नो एवरीथिंग, दे कैन कैच एवरीथिंग। तो हम जो बात करेंगे, अगर हम बार बार उनको बोलेंगे नहीं जाओ नहीं जाओ, वो उसी कॉस्ट्यूम में बैठे रहेंगे, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उनको खींच रहे हैं ऐसे। और अगर हम उनको प्यार से बोलेंगे बस अभी ये शरीर आपके लिए अच्छा नहीं है, डोंट बी हर्ट फॉर अस, They will fly. आत्मा को सिर्फ let go करना होता है। तो detachment मतलब उनके बारे में सोचो, हमारी attachment की वजह से वो suffer नहीं करने चाहिए, कोई ठीक हो सके तो। तो जब भी कोई ऐसी situation हो कि we don't know कि वो ठीक हो रहे हैं नहीं, तो हमेशा एक ही संकल्प create करना, जो उनके लिए सही है वो होना चाहिए, जो उनके लिए सही है वो होना चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, और ये सिद्ध हो जाएगा। हमें नहीं पता कि सही कौन सा है, हो सकता है सही ये हो कि वो ठीक हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन हो सकता है यहां इस शरीर में रहना अब उनके लिए सही नहीं है, लेकिन हम बोलते जाते हैं नहीं रहना है रहना है रहना है, तो देन दे आर लिविंग इन अ स्टेट विच इज नॉट अ राइट स्टेट फॉर देम टू बी। तो एक संकल्प विच इज द हाइएस्ट वाइब्रेशन फॉर देम, जो उनके लिए सही है वो होना चाहिए। तो रोज की जो स्टडी होती है ना, वो हमें हर सिचुएशन में राइट थॉट क्रिएट करना सिखाती है। एंड फिर जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं, तो जीते हुए भी डिटैच्ड प्रैक्टिस है, पूरी तरह से नहीं पहुंचे अभी तक डिटैचमेंट में, पर प्रैक्टिस चल रही है अच्छे से। और वो प्रैक्टिस कब होती है? छोटी छोटी चीजों में, सिचुएशन पर अफेक्टेड नहीं, डिटैच्ड। कोई गलत कर रहा है, हम अच्छी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज डिटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब वो गलत कर रहे हैं, हम भी परेशान हैं, दिस इज अटैचमेंट। जैसे दो बच्चे अटैच्ड हैं तो इकट्ठे ही करना पड़ता है उनको सब कुछ, डिटैच हो गए, सर्जरी हो गई, अब एक बैठेगा एक खड़ा होगा, दिस इज डिटैचमेंट। तो फिर वो डिटैचमेंट से हमारे लिए खुद भी शरीर छोड़ना बहुत ईजी होगा, और अगर हमारे आगे कोई और जाएगा तो उनको भी प्यार से भेजना बहुत ईजी होगा। सो हर क्षण जीवन ऐसा जिए, याद रखें कि हमारी कोई भी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है, और अपनी ट्रांजैक्शंस को उस अनुसार सेट करें, अपना हर कर्म उस अनुसार हो सकना चाहिए कि ये मेरा 31 मार्च हो सकता है, आई विल नॉट गेट अ टाइम टू रेक्टिफाई, आई विल नॉट गेट द टाइम। तो इट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डाइंग, and the art of dying only is the art of living actually. कि मुझे जाना clean and clear है, तो फिर जीना clean and clear है, कोई pending नहीं, कोई किसी के बारे में गलत नहीं, नफरत नहीं, दर्द नहीं, दुख नहीं, वो कुछ भी कर रहे हो, मुझे अपना हिसाब किताब सही रखना है। और इसको करने के लिए क्या करना है यहां से जाने के बाद? सिर्फ एक सिंपल चीज, जो दिनचर्या, जो चीजें आप रोज सुबह 4 दिन कर रहे हैं, इसको जाते ही कंटिन्यू करना। ऐसा मत सोचना कि हमें सब समझ में आ गया, हमारी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, बस अब मेरी लाइफ चेंज हो गई। किसी की लाइफ 4 दिन में चेंज नहीं होती है। 4 दिन यहां और 4 दिन वापस, यू विल बी बैक टू व्हाट यू वर ऑन थर्सडे। जर्नी ओनली कंटिन्यूज अगर हम इस चीज को, सुबह उठ के मेडिटेशन करना, रोज थोड़ी देर ज्ञान अपने अंदर डालना, जिसको हम कहते हैं मुरली, मुरली मतलब परमात्मा के महावाक्य। आज आप सुनेंगे 12 बजे कि परमात्मा कैसे ये ज्ञान दे रहे हैं, तो वो परमात्मा के महावाक्य हम रोज सेंटर पर स्टडी करते हैं, और वो महावाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते, वो शब्द विद शक्ति होते हैं, क्योंकि वो भगवान के महावाक्य हैं। तो रोज वो अपने अंदर भरते हैं, रोज योग करते हैं, तो जीवन की जो परिस्थिति आती है स्थिर रहकर उसको क्रॉस करते हैं, तो पुराने कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाते हैं, नया कॉन्शियसली अटेंशन रखते हैं कि सही करना है, तो भाग्य सही चलता है। तो इसलिए यहां से जाने के बाद जो आपका सेंटर जो सबसे नजदीक है वहां पर अपनी जर्नी को कंटिन्यूड रखना। ये 3 दिन की रिट्रीट नहीं, 3 दिन टू लर्न हाउ टू लिव आगे, उसके लिए हम आए हैं। तो वापस जाकर जो सेंटर नजदीक है इमीडिएटली नेक्स्ट डे जाना, ये नहीं सोचना अभी तो आए हैं 4 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद ये वाली एनर्जी डाउन हो जाएगी, अभी जो अप हुई है उसको अप रखना है, अप रखना है। तो वापस जाकर मुरली क्लास जाएंगे, मेडिटेशन वहां बहने आपको 1-on-1 बैठकर सिखाएंगे, अब फिर हम वो करेंगे। धन हमेशा हाईएस्ट प्रिंसिपल्स के साथ कमाना, कलयुग कलयुग इसीलिए बना है क्योंकि हमारा पर्पस ज्यादा कमाना हो गया। हाउ मच वी अर्न इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ वी अर्न इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ मच वी अर्न तो फिजिकल चीजें लाएगा, ये पीछे रह जाएंगी, बट हाउ आई अर्न मेरे साथ आगे चला जाएगा। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल्स, धन से अन्न आता है, तो जैसा धन वैसा अन्न होता है घर का, और जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा तन होता है। तो धन में अगर कुछ भी डाइल्यूशन आई तो वो मन तन अन्न सब पे अफेक्ट होगा। तो धन प्योर दुआओं के साथ आए, अन्न सात्विक खाएं। आज हम 3 दिन से यहां सात्विक अन्न खा रहे हैं ना, किसको लग रहा है लाइट लग रहा है, लाइट लग रहा है ना भोजन, इसीलिए बस ये भी कंटिन्यू करना है जाके। एक तो शुद्ध वेजिटेरियन, तामसिक भोजन खाना कौन से कर्म में जाएगा और कौन सी वाइब्रेशन में भी जाएगा, सोचो स्लॉटर हाउस की एनर्जी कैसी है, हमें शमशान घाट की एनर्जी इतनी हैवी लगती है, स्लॉटर हाउस में तो क्या हो रहा है, कितने पेन और ट्रॉमा में है एनिमल, और फिर कितना हेल्पलेसनेस और पेन है, फिर फियर है, अग्रेशन है, वायलेंस है, डेथ है, वो कोई खाने की एनर्जी, वो खाने की चीज है। वो जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो जाने के बाद 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए शाकाहारी वेजिटेरियन खाना खाएं, देखें आपके मन और बॉडी दोनों पे क्या रिजल्ट आता है उसका। बॉडी भी लाइटर फील करती है, हैवी टू डाइजेस्ट फूड है वो, और यहां के लिए तो हैवी है, और कर्म वाइज भी राइट नहीं है कि अपने टेस्ट और अपने हेल्थ के लिए किसी और को डेथ देना, ये कौन सा कर्म, ये कौन सा कर्म बनता है। तो कर्म वाइज भी राइट नहीं है, न्यूट्रिशन वाइज भी राइट नहीं है, वाइब्रेशन वाइज भी राइट नहीं है। तो सात्विक अन्न घर में परमात्मा के, आज यहां से जो शॉप्स है ना यहाँ पे साउंड म्यूजिक की होगी, वहां पे एक पेन ड्राइव मिल सकती है जिसपे सारे गाने हैं, जो आप बहुत सारे गाने सुनते हैं यहाँ चलते हैं, तो एक पेन ड्राइव होगी छोटी सी, उसपे सारे गाने होंगे, वो पेन ड्राइव ले लीजिए, अपने किचन में लगा दीजिए, और खुद खाना बना रहे हैं या जो भी आपके लिए खाना बना रहा है उसको बोल देना, जब खाना बन रहा है हाई एनर्जी वर्ड्स रसोई में चलने चाहिए। जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कैसे खाना बनता है, तब वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो परमात्मा के याद के गीत, महावाक्य, कुछ भी रसोई में चले, खाने के अंदर वो एनर्जी जाए, फिर जब हम खाना खाने लगे तो हम 10 सेकेंड रुकें, उसको याद करके वो संकल्प डालें, देन इट इज हाई एनर्जी अन्न। तो धन दुआओं के साथ आए, अन्न सात्विक खाएं, मन के लिए रोज सुबह मेडिटेशन और स्टडी क्लास जाएं, तन के लिए तो एक्सरसाइज करते ही हैं, चारों एनर्जीज को हार्मनी में रखना है। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।